نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي روح القرآن والمحصنات پارہ نمبر پانچ. آج ہم اس میں سورۃ نساء کی آیت نمبر 24 سے بات شروع کریں گے اور ٹاپک کیا ہے والمحصنات من النساء شادی شدہ خاتون سے نکاح کی ممانعت. ہم نے پچھلے پارے کے آخر میں وہ خواتین جن سے کسی بھی مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا ان کی ایک لمبی لسٹ دیکھی تھی جس میں گھر میں رہنے والی خواتین جن کے ساتھ انٹریکشن بھی ہے اور کبھی انسان گھر میں اکیلا بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی ساری خواتین سے نکاح حرام کر کے ہم سب پر ایک بہت بڑا احسان کیا کہ گھر کا ماحول پاک رہے اور پروڈکٹیوٹی رہے. اب اسی لسٹ میں ایک نام صرف والمحصنات جہاں استعمال ہوا ہے آیت 24 میں. اگر دیکھا جائے تو لفظ محصنات اس کے چار معنی ہمیں ڈکشنری میں بھی ملتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس میں بھی اس کے چار معنی ہیں. سب سے پہلا معنی جو اس وقت ہم سب کے موضوع کے بہت قریب ہے وہ ہے شادی شدہ عورتیں, یعنی ہر وہ عورت جو کسی بھی مرد کے نکاح میں ہے دنیا کے ہر مرد کے لیے وہ حرام ہو جاتی ہے. دوسرا آزاد عورت, جب لونڈیوں اور آزاد عورتوں کا تصور تھا اس وقت کے لیے یہ معنی تھا. تیسرا پاک دامن عورتیں, پیغام ہے مردوں کو کہ جب شادی کا وقت ہو تو صرف اس کی شکل و صورت نہ دیکھو, صرف اس کا قد کاٹ نہ دیکھو, اس کی دولت اور اس کا اور کوئی حسن تمہیں نہ لبھائے بلکہ اس کی پاک دامنی بھی دیکھ لو. اچھے مردوں کے لیے پاک دامن عورتیں جائز ہیں. اور پھر وہ سینس جس کو قیامت تک آپ ایوائڈ نہیں کر سکتے وہ کیا ہے کہ مسلمان عورت ہو. جب ہم اس لفظ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت ہی محبت محسوس ہوتی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ہمارے لیے پہلا معنی مراد ہے. اور اس چیز کو ہمیشہ سمجھتے رہیے گا کہ شادی ایک قلعہ ہے. یہ جو لفظ ہے نا محصنات, اس میں لفظ ہا سواد نون آتا ہے اور حصن کہتے ہیں قلعے کو, فورٹریس, سٹیڈل. فطری سی بات ہے کہ ایک عورت جب شادی شدہ ہوتی ہے تو بہت ساری نظروں سے بچ جاتی ہے. پہلے تو وہ لڑکیاں جو شادی شدہ ہوتی ہیں وہ لڑکوں کی ماؤں سے بچ جاتی ہیں. کسی محفل میں جائیں وہ بچیاں جن کے بھی شادی نہیں ہوئی تو دوسری خواتین ان کو اپنے بچوں کے لیے دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو بلا وجہ بغیر شادی کے رہنا اسلام میں اس کی بالکل اجازت نہیں. افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ آج وقت کے گزرتے دھارے کے ساتھ ہماری بھی نسلوں میں شادی نہ کرنے کا رجحان پایا جا رہا ہے جو کہ ویس سے سر اٹھاتا ہے. تو ہمارے لیے اس میں عمل کتنی سی بات ہے فی الحال کہ ہم اپنے بچوں کے نکاح جلد از جلد کریں تاکہ خود ان کو فکر نہ لگ جائے کہ ہم بھی اپنے لیے کچھ ڈھونڈے. پھر اس میں اس وقت کے حالات کے مطابق آیت 25 میں کنیز سے نکاح کی سہولت موجود ہے. جہاں بھی لفظ لونڈی یا کنیز آتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے. تو یہاں چند جملے سن لیجئے کہ اسلام نے نہ تو غلامی کو شروع کیا اور نہ اس کو پروموٹ کیا بلکہ اسلام کے بنائے ہوئے قوانین جو تھے اس کی وجہ سے آج آپ کو دنیا میں غلامی نہیں دکھتی. یہ شروع سے تھی, یہ ایک حقیقت ہے. جنگوں میں قیدی بھی آتے تھے, لونڈیاں بھی آتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتیں جو بیچاری لٹی پٹی آ رہی ہیں یا دشمن کی طرف سے آ رہی ہیں ان کے اس معاشرے میں سروائیول کے لیے یہ ایک بڑا حلال طریقہ رکھا تھا کہ اگر کسی کو کسی آزاد عورت سے نکاح کی سہولت نہیں مل رہی, کوئی باپ اپنی بیٹی سے اس کا نکاح نہیں کر رہا کیونکہ باپ بہت کچھ دیکھتے ہیں, تو پھر کوئی لونڈی کسی کی ہے تو اس سے نکاح کر دیا جائے گا کیونکہ اس کے اگر حقوق کم ہیں تو فرائض بھی کم ہیں. اس کے بعد آگے چلتے ہیں اگر تو آیت 26 سے 28 میں شریعت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے. بہت سارے لوگ شریعت کو بوجھ سمجھتے ہیں, شریعہ بل کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں, اور لوگ چاہتے ہیں کہ وہ آزاد ہوں, بالکل کوئی انہیں کچھ نہ کہے, نہ کوئی سنے, نہ کچھ کہیں. تو میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ اگر آپ بکری کے گلے میں بندھی ہوئی ایک رسی جس کو پہلے ایک لوپ کے ساتھ باندھا جاتا ہے پھر اس کے ساتھ 6-7 فٹ کی رسی باندھ کر کھونٹے سے باندھ دیا جاتا ہے. اب یہ اس بکری کی سیکیورٹی ہے, وہ 6-7 فٹ کے اندر تو گھوم پھر لے گی لیکن جو ہی وہ 6 فٹ سے باہر جائے گی تو وہی رسی اس کے گلے میں چبھے گی. آپ اس رسی کو شریعت سمجھیے. جب ہم شریعت کی باؤنڈریز کے اندر رہتے ہیں تو ہم سیکیورٹی فیل کرتے ہیں, जो ही हम इससे बाहर जाते हैं, फिस्क की कैफियत है, ट्रांसग्रेशन है, तो ग़ियानी है, अल्लाह की पसंद को छोड़कर उसकी नापसंद के काम करने में जाते हैं, तो शरीयत गले का फंदा बन जाती है। और बस दफ़ा ख़वातीन को भी कुछ ऐसे लुकमे देकर सड़कों पे खड़ा कर दिया जाता है कि ये शरीयत तुम अपने पास रखो और हमें तो अपनी मर्ज़ी करनी है। ऐसी सारी चीज़ों के लिए अल्लाह सुबहाना ताला ने अगले हिस्से में आयत 25 के बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक पैगाम दिया, और वो पैगाम क्या है कि युरीदुल्लाहु युखफ्फिफा अन्कुम वखुलिकल इंसानु दईफा। अल्लाह ताला चाहता है कि तुम पे कमी कर दे, तख़फीफ कर दे, तुम्हारे बोझ को कम कर दे, क्योंकि इंसान कमज़ोर पैदा किया गया। इस आयत के अंदर ख्वाहिशात की बात आई, यानी शरीयत बमुकाबला शहवत। जिस माशरे में लोग शहवत पे चल निकलते हैं, वो माशरे पानी की रोह में बह जाते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें बनाया है, मुझे पता है कि तुम कितने पानी में हो, तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, तो लिहाजा मेरे बनाए हुए कवानीन के मुकाबले में अपनी ख्वाहिशों की बातें ना करो। आज आप देखिए कि पूरे वेस्ट ने ख्वाहिश को शरीयत बनाया और उसका नतीजा क्या हुआ। पहले तो लिविंग टुगेदर था, पहले शादी का तसव्वुर नहीं था, होते होते जब उससे दिल भर गया तो फिर मर्द मर्द और औरत औरत के पेयर्स बनने लगे, और अब तो हद ख़त्म हो गई। तो लिहाजा हमारा इसमें अमल क्या होना चाहिए कि वो शरीयत जो अल्लाह ने इंसान की कमज़ोरियों को सामने रख कर बनाई है, उसको नेमत समझना और इसके मुकाबले में ख्वाहिशात और शहवात के पीछे नहीं लगना। इसके बाद आयत नंबर 29 से 30 अगर आप देखें तो इसमें माल और जान की हुर्मत की बात हो रही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल। इतना खूबसूरत असूल है कि एक दूसरे का माल तुम पर ऐसे ही हराम है जैसे उसकी जान हराम है। आप वो वाक़या याद कीजिए जो आपने यकीनन कई दफ़ा सुना पड़ा होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज्जतुल विदा में थे तो आपने उस वक़्त लोगों को मुखातिब किया था और पूछा था कि आज का दिन क्या है, और उसमें अपने तीन चीज़ों की हुर्मत की बात की थी, और जिसमें जान, माल और इज़्ज़त। हम जान लेने को तो बहुत बड़ी बात समझें, लेकिन किसी की इज्जत लेने पे बात ना हो, किसी का माल चुरा लिया तो कोई माल कोई खुशी से आपको खिलाए, आप किसी के मेहमान हैं वो आपको खिलाता है, आप कहीं काम करते हैं उसके नतीजे में उजरत ले लेते हैं, आप तिजारत करते हैं लेने और देने में, तो ये तो है बहुत अच्छे तरीके। इसके अलावा हर वो चीज़ जिसकी शरीयत में आपको गुंजाइश नहीं मिलती तो आपके मेरे लिए जायज़ नहीं। और बापों का ये फ़र्ज़ है कि अपनी औलादों के पेटों में हलाल डालें, क्योंकि जब हराम जाता है तो बिल्कुल गलत पेट्रोल जाने वाली गाड़ी की तरह वो गाड़ी धक्के देने लगती है, वो झटके देने लगती है। आप कोई भी चीज़ खाते हैं ना तो आपकी तबीयत पे उसका असर आता है ना, ज़ाहरी तौर पे भी मिर्चें खाते हैं तो भी आता है, मीठा ज़्यादा खाएंगे तो भी होगा। तो ये जो भी खाना खाया जाता है ना, जो भी चीज़ हमारा सोर्स ऑफ इनकम होती है, ये भी हमारी नेकियों पर, हमारी इबादात पर, और इवन औलादों की फरमा बरदारी या नाफरमानी, बीवियों के नशूज़, मर्दों की बदनज़री, इन सब पे बहुत असर है। कभी भी आपको अगर कोई वजह न समझ आ रही हो ना, ऐसा क्यों है, तो फिर सोर्स ऑफ इनकम को चेक कीजिए। और ये उन पांच सवालों में से एक सवाल है कि जिसका जवाब दिए बगैर क़यामत के दिन लोग हिल न सकेंगे। अल्लाह के नबी की बड़ी प्यारी हदीस है कि ला तज़ूल क़दमन इब्न आदम मिन इंदि रब्बिही हत्ता युसअलु अन्हु खमसा, कि जब तक पांच सवालों के जवाब ना दिए जाएं, आदम का बच्चा मैदान महशर से हिल ना सकेगा। तो सारे बाकी सवालों को छोड़कर जो आगे अपनी जगह पे इंशाल्लाह आएंगे, यहाँ क्या है कि मिन ऐनक तसबहु अन मालिन, माल के बारे में मिन ऐनक तसबहु, कहाँ से इसको कमाया था। तो अल्लाह ताला हमें रिस्क हलाल की हासिल करने की कोशिश करने की तौफीक भी दे, यानी अल्लाह ताला हम सबको रिस्क हलाल अता फरमाए। दूसरी चीज़ इसमें दूसरे की जान लेना है। वला तक्तुलु अन्फुसकुम, इस्लाम ना सुसाइड को प्रमोट करता है ना दूसरे की जान लेने को। खुदकुशी करने वाले के लिए बहुत बड़ी बड़ी वईदें हैं। आज हमारी यूथ के अंदर सुसाइड का रुझान हो रहा है, ये उस फ्रस्ट्रेशन और उस स्ट्रेस को साबित करती है जो उनके कंधों पर है। तो अल्लाह से दुआ है कि हम अपने बच्चों को बुराइयों से बचा सकें। फिर आगे आए 31 में कबीरा गुनाहों की बात है। गुनाह तो सारे ही बड़े हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी हस्ती की नाफरमानी है, लेकिन कुछ गुनाह बहुत ही बड़े होते हैं। तो इस आयत में अल्लाह ने पैगाम दिया कि बड़े गुनाहों से बचो, हम तुम्हारे छोटे गुनाह माफ़ कर देंगे। इन तजतनी बुकबाई रमातुन हऊ न अनहु नुकफ़िरन कुम, نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ گناہوں کی کتنی اقسام ہیں؟ گناہوں کی دو اقسام، ایک کبیرہ اور دوسرے صغیرہ، بڑا گناہ اور چھوٹا گناہ. اللہ کی نافرمانی اور گستاخی کے اعتبار سے تو ہر گناہ ہی بڑا ہے. آپ دیکھیے کہ ایک بچہ اپنی دادی کی بات نہ مانے، اور بات بس اتنی تھی کہ بیٹا پانی لا دو، اور بعد میں کہے کیا ہوا، کوئی بہت بڑی بات تو نہیں تھی، دادی نے پانی ہی تو مانگا تھا. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ بیٹا بڑوں کی ہر بات مانتے ہیں، آپ کو اپنی دادی کو فوراً پانی دینا تھا. تو آپ دادی والے کانسیپٹ کو ذرا سا اوپر کیجئے، بہت ہی اوپر کیجئے. اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے، ہم اس کی کوئی بھی نافرمانی کریں گے تو یہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایک قسم کا اعتماد نہ ہونا ہوگا. یہاں اس آیت میں کبیرہ گناہ کی بات ہے. اب کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی ایک لسٹ نہیں دی. علماء کرام نے ہر دور میں اس پہ بات کی. الکبائر نام کی ایک کتاب ہے عربی کی، امام زہبی کی، انہوں نے کئی چیزوں کو اکٹھا کیا ہے، لیکن عموماً علماء کرام جس چیز کو جمع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس پر کوئی حد مقرر ہو. جیسے اسلام میں کچھ سزائیں ہیں جس میں، جیسے زنا ہے، چوری ہے، قتل وغیرہ، ان کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں. دوسری اس کے اندر ایک چیز آتی ہے کہ جن پر قرآن اور حدیث میں وعید آئی ہو یا لعنت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہو. اسی طرح وہ احکامات جن کی حرمت اللہ اور رسول نے واضح کر دی. تو آپ کو مجھے بچنا ہے. ایک حدیث ہے، بہت جگہ کتابوں میں آتی ہے، کہ اجتنبوا سبع الموبقات، سات ہلاکت خیز گناہوں سے بچو. اس میں جن کاموں کو کہا گیا اس میں سب سے اوپر ٹاپ موسٹ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، پھر اس میں دوسرا جادو کرنا، ناحق قتل کرنا، یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگا دینا، لڑائی کے دن پیٹ پھیرنا یعنی اسلام کی جان کو مشکل میں ڈال کر اپنی جان بچا لینا، اور جھوٹی گواہی دینا. یہ سب آتا ہے. اب آپ ان سب کو اگر سامنے رکھیں تو ہمیں ان سب میں سے سب سے بڑا کون سا لگتا ہے؟ اس سے بھی زیادہ ہیں، لیکن یہاں آپ دیکھیے شرک. آج لوگ اور جادو کو برا سمجھیں گے، تہمت کو برا سمجھیں گے، لیکن شرک کے لیے وہ نفرت نہیں ہے ہمارے دلوں میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سے وہ محبت نہیں ہے. آج کی ہماری ماں کے ساتھ دوسری کسی عورت کو لے آئے، یا اگر کوئی مطلب باپ کسی دوسری عورت کو لے آئے، یا کوئی اور عورت ایک ماں ایک اور کسی اور مرد سے تعلق قائم کرے، تو ہم اس کو بہت برا کہیں گے. ہمارے ہی شوہر کسی اور عورت سے شادی کرنا چاہے تو ہم پسند نہ کریں، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ شرک. اس لیے ہمیں اس بارے میں مزید جاننا ہے، قرآن کو پڑھنا، اللہ اسماء الحسنیٰ کو پڑھنا، سمجھنا، اللہ کی قدر کو پہچاننا شرک کو ختم کرتا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے. آگے ہے آیت نمبر 32، اس کا ٹاپک ہے کہ دوسروں سے حسد مت کرو. ولا تتمنوا ما فضل اللہ به عبادکم علی عباد، یعنی عورت اور مرد کو اپنی محنت کا پھل ملے گا، اس لیے تم حسد نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی خواتین کی نظر نیکیوں پہ ہوتی تھی. وہ کہتی تھی کہ مردوں کے پاس تو ہم سے زیادہ نیکیوں کے مواقع ہیں، وہ باہر بھی جا سکتے ہیں، پانچ وقت مسجد میں نماز بھی ادا کرتے ہیں، کماتے بھی ہیں، تو ہم اپنی نیکیاں کیسے بڑھائیں. تو اللہ نے اس کے اوپر یہ بات کہتی کہ اگر عورت عورت ہونے کے ناطے اپنے دائرہ کار میں رہے، اپنے فیلڈ میں رہے، اور عورت کا دائرہ کار اس کا گھر، اس کا شوہر، اس کے بچے، اس کے گھر کے بزرگ ہیں، تو اگر کوئی بھی عورت اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے پوری کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا اجر دے گا. اور ہم خواتین کے لیے تو کتنی سہولت ہے، نہ کر کے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے رہا ہے. تو لہٰذا کوئی بہت بڑی بڑی باتیں کرنے کا شوق رکھنے کی بجائے اپنے گھروں کی اصلاح کر لینی چاہیے، اپنی ذمہ داریوں کو احسن طور پہ نبھائیے. اور دوسری بات بہت ہی اہم ہے کہ اگر گھر میں مرد ہیں اور ایک عورت ان کا کھانا پکانا، ان کی چیزوں کو ٹیک کیئر کرتی ہے، تو مردوں کی ساری نیکی عورتوں کے پاس ہے. بس آپ دیکھیے کہ رمضان ہے، کسی نے سوال کیا کہ یہ جو عورتیں سحریاں بناتی ہیں اور افطاریاں بناتی ہیں تو کیا ان کو اجر ملتا ہوگا؟ تو آپ اپنے دل سے پوچھیے، اجر ملتا ہے؟ گھر کے ہر فرد کے روزے کا اجر آپ کے ذمہ آ جاتا ہے. آپ کے شوہر، آپ کے بچے، آپ کے ملازم، محبت سے، سلیقے سے، اچھی نیت سے آپ صاف ستھرا سادہ بھی کھانا بنا دیں گی تو سب کا اجر ہوگا. لیکن اس کا یہ بھی نہیں مطلب کہ کچن میں کئی گھنٹے عورتوں کو کھڑا کروا دیا جائے، لیکن بہرحال آپ لوگوں کی نیکیوں میں حصے دار ہو جاتی ہیں. جو بھی نیکی کرتا ہے انسان، اس سے دوسروں کو اگر فائدہ ہوتا ہے، جیسے اس وقت ہم جو کام کر رہے ہیں، اگر اس میں کسی کا حصہ ڈلا ہوا ہے तो क्या ये उनके लिए नेकी का जरिया नहीं बनता? फिर आगे आए 33 को देखें तो कानून वरासत हिकमत और अदल के मुताबिक है, वली कुल्ली जालना मवाली यमे मतरकल वालिदानी वलअक्रबून। यानी जो आज का मौजूदा कानून वरासत है ना, ये अल्लाह सुबहाना ताला ने हमें बहुत ही हिकमत के साथ दिया है। यानी इसमें बहुत सहूलत भी है और अल्लाह ताला ने सबको हिस्से दिए, और ये ग्रेजुअली आया। जैसे कुछ चीज़ें ग्रेजुअली हराम की गई, शराब की तरह, सूद की तरह, इस तरह माशरे में थोड़े से बढ़कर करते करते इस वक्त बहुत खूबसूरत कानून है। आप इसको सीखिए, इल्मुल फराइज कहते हैं। फिर इसके बाद अब आगे औरत और मर्द, यानी ख़ानदान, एक फैमिली बोन्ड की बातें होती हैं। आयत 34-35 बहुत ही अहम आयत है कि जिसमें इस सवाल का जवाब मिल जाता है कि क्या औरत और मर्द में इक्वलिटी है, क्या औरत और मर्द बराबर है। तो अल्लाह ताला ने इसमें मर्द को मर्द के काम और औरत को औरत के काम बता दिए। मसलन अर्रिजालु कव्वामुना अलन्निसा, मर्द कव्वाम है। यहाँ से इसको समझने की ज़रूरत है, हर मर्द को अपने बारे में पूछना है क्या मैं कव्वाम हूँ। और कव्वाम का जो लफ्ज़ है ना, ये मुदब्बिर, मैनेजर, मैनेजमेंट करने वाला, जिम्मेदार, कफील। यानी मर्द स्ट्रांग होता है, मर्द के कंधों पे जिम्मेदारी है। इस्लाम ने शादी से लेकर औरत के उस आकर रहने के बरतने की चीज़ों में और फिर सारी ज़िंदगी उसकी टेक केयर का जिम्मा मर्द के जिम्मे दी है। आज हमारे कल्चर में शादी ही के वक्त पे औरत और औरत के घर वालों से चीज़ें वसूल की जाती हैं। इस आयत को अगर आप गौर से देखें तो दो वजूहात हैं, बीमा फद्दलल्लाहुबादुहुमलाबाद, यानी मर्द जिस्मानी तौर पे स्ट्रांग होता है और उसकी जरूरत ज़्यादा होती है, इमोशनली बहुत स्ट्रांग है। औरत बात पे बात रो सकती है, मर्द नहीं रोता। औरत छोटी सी बात पे घबरा जाती है, मर्द नहीं घबराता। और दूसरी वजह, बीमान फकू मिनम वाली है, खर्च करते हैं। आम शरीफ मर्द किसी का भी तसव्वुर ले आइए, बाप है या भाई है या आप शौहर हैं, देखिए अपनी कमाई का 90% से भी ज़ायद बीवी बच्चों और घर वालों पर लगा देते हैं। ये अल्लाह सुबहाना ताला ने उनको जो एक जिम्मेदारी दी है वो इसको पूरा करते हैं। और फिर इसी तरह से आप देखिए कि आगे नेक बीवी अपने शौहर की ताबे होती है। शौहर का जिक्र करने के बाद क्या फरमाया, फस्सालिहातुन कानितातुन, औरत ताबेदार होगी, सालिहा होगी और कानिता होगी। एक औरत अपने मर्द के साथ अपने ताल्लुक को जिस तरह से कनूत के साथ और सालेहियत के साथ निभाएगी, वो उसके हक में कितनी बड़ी गवाही होगी। तो औरत को मर्द की निगेबानी की चूँकि ज़रूरत होती है, इसलिए औरत पर फरमाबरदारी और इफ़्फ़त की जिम्मेदारी होती है। एक औरत अपने आप को कैसे जिम्मेदारियों में निभाए कि वो अपनी इज्जत की, अपनी जान की, माल की हिफाजत करे। मर्द को औरत पर फिजिकली भी बरतरी हासिल है, मजबूत जिस्म है, जुस्सा है, इसी तरह कुव्वत जो इंतज़ाम चलाने के लिए दरकार होती है, माल कमाने और खर्च करने की जिम्मेदारी, ज़रूरियात का ख्याल रखना। तो आप कह सकते हैं कि मुहाफिज, मुंतज़िम, निगहदाश्त करने वाला अगर मर्द है तो औरत बात मानने वाली है। औरत के मिजाज में नरमी होनी चाहिए। ये भी नहीं कि उसकी अपनी कोई राय ना हो, उसकी कोई अपनी ज़िंदगी नहीं, वो अपने बारे में कोई फैसला नहीं कर सकती, ऐसी कोई बात नहीं है। औरत का मामला जो है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे कुर्सी का। आप देखिए कि घर में कुर्सी और मेज़ तो हर एक के ही होता है। इस वक्त भी हो सकता है कि आप इसी को इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने कुर्सी को ज़रा सा नीचा, फोमी से बनाया हुआ है, और जो टेबल है वो ऊंचा है। अगर हम इस टेबल को भी देखें तो ये थोड़ा सा स्टर्डी, थोड़ा सा ऊंचा टेबल बनता है। इससे क्या पता चलता है कि मर्द ज़रा सा एक ऊंचा हिस्सा, सिर्फ अलैहिन्ना दरजा, क्योंकि शादी में सब कुछ मर्द की तरफ से हो रहा होता है, तो फिर ये मर्द का जिम्मा बनता है। जबकि अगर हम बाकी चीज़ों को अगर देखें तो औरत को भी और मर्द को भी एक दूसरे की इज्जत करनी है और एक दूसरे की रिस्पेक्ट के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना है। आप देखिए किसी भी माशरे में ये कहना कि अगला बंदा अपना काम करे और खुद ना करना, ये एक चीज़ कभी भी फायदा नहीं देगी। आज क्या हुआ कि औरतों को अवेयरनेस दे दी, कुछ ज़्यादा ही, कहीं वीमेन राइट पे, कहीं किसी और नाम के ऊपर। नतीजा क्या हुआ कि औरतें हकूक मांगने के लिए सड़कों पे निकल आईं और मर्दों को वो इल्म नहीं दिया गया। अल्लाह के नबी के दौर का जो मर्द था ना, वो आके क्या पूछता था, एक हदीस का खुलासा बता रही हूँ, कि अल्लाह के नबी हमारे ऊपर हमारी बीवियों के क्या हकूक है, यानी हम अपनी बीवी का हक कैसे अदा करें, तो फिर उस माशरे में अमन चैन तो खुद ब खुद होगा। फिर अगर हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं तो अर रिजालु कव्वामूना अलन निसा, इस लफ्ज़ का बाज दफ़ा तर्जमा भी अजीब किया जाता है, मर्द हाकिम है। बहुत सारी खवातीन ऑफेंड हो जाती हैं इस बात पे। तो देखिए कव्वाम क्या है, बवजह नंबर एक बीमाफत दल्लाहु का लफ्ज़ है, कुव्वत जो इंतज़ाम चलाने के लिए दरकार होती है, और दूसरी वजह माल कमाने और ख़र्च करने की ज़िम्मेदारी, यानी मर्द का फ़र्ज़ है कि वो अपनी बीवी की ज़िम्मेदारियों को, ज़रूरियात को पूरा करे, मुहाफ़िज हो। लेकिन यहाँ मैं बीवियों से भी कहूँगी कि अपने मर्दों को इतना मजबूर मत कीजिए कि वो हराम लाने पर माइल हो जाए। एक समझदार एक सुघड़ खातून अपने घर के सुकून के लिए बहुत कुछ करती है, तो जितनी उसकी कमाई है हर मर्द के पास कम मुख्तलिफ होगा, कोई करोड़पति होगा और किसी के पास हो सकता है कि चंद लाख भी ना हो। तो हमेशा औरत के अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि जितना भी उसके पास हो उसके अंदर गुजारा कर सके। फिर उसके बाद आगे बड़ी अहम आयत है, आयत नंबर 36 और 7, इसमें पूरे इस्लाम की जो माशरती तालीमात है ना उसका खुलासा है, यानी एक सोसाइटी किन नॉर्म्स पे इस्टेब्लिश करेगी जिसमें मुख्तलिफ लोगों को उनके हकूक़ दिए जाएंगे। आप देखेंगे कि इस आयत में वअबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैया से बात शुरू हो रही है कि सबसे पहले अल्लाह को उसका हक दो, वबिल वालिदैनि एहसाना, फिर अपने वालदैन के साथ एहसान का रवैया करो, और वबिज़िल क़ुरबा रिश्तेदार और यतीम और मिस्कीन और हमसाए जो तुम्हारे रिश्तेदार भी हैं, और वो हमसाए जो अजनबी हैं, और कुछ ऐसे यानी हर किस्म के रिश्तेदार के हक दो, और फिर मुसाफिरों के और अपने लौंडी गुलामों के दो, क्योंकि इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा। ये टुकड़ा बहुत अहम है। यकीनन अल्लाह ताला तकब्बुर करने वाले और शेही खोरों को पसंद नहीं करता। क्या पता चला कि इंसानी मामलात में दूसरों के हक दिए ही नहीं जा सकते जब तक इंसान के मिजाज में आजजी ना हो। आप देखिए एक शोहर शोहर होने के नाते रोब डालता रहे, या एक बीवी अकेली और लाडली और अकलौती बीवी बेटी होने की वजह से बहुत ही सर चढ़ी बात करे, तो उस माशरे में कभी भी सुकून नहीं आएगा। अल्लाह सुबहान ताला की इबादत और जिन जिन लोगों से हुस्ने सलूक की यहाँ ताकीद है, इस पर अमल करने के लिए दिल को किब्र से खाली करना होगा। मुतकब्बिर और मगरूर शख्स सही मानों में ना तो हक़ इबादत अदा कर सकता है और ना अपनों और बेगानों के साथ हुस्ने सलूक का एहतमाम कर सकता है। फिर उसके साथ ही अगले हिस्से में अल्लज़ीन यबखुलून व यामुरून अन्नास बिलबुख़्ल की बात होती है कि दिल घुटे हुए हों, बुखल हो तो भी ये जिम्मेदारियाँ अदा नहीं होती। सवाल क्या है कि बुखल क्या है? तो बुखल में सबसे पहली चीज़ जो जहन में आती है ना, वो माल का बुखल है, माली बुखल। खुद भी बखील, दूसरों को भी बखील होने की दावत देना, यानी कंजूसी, स्टिंजीनेस, कोई ऐसी चीज़ के जो पैसा तो है लेकिन इसलिए नहीं खर्च करना कि ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह हमारी आदत, हमारी बातों में भी कुछ बुखल होता है, कौली बुखल। मसलन सलाम नहीं कर रहे, कर भी रहे तो अजीब व गरीब से कर रहे हैं, तरीके में घुटा हुआ, अजनबियत वाला सलाम है, फिर मुस्कुराने से गुरेज करना। आप देखिएगा कि अल्लाह सुबहान तआला क्या फरमाते हैं कि बहुत सारे काम बंदा बग़ैर पैसा दिए कर सकता है। लोग कहते हैं ना कि मीठा ना दो मीठी बात तो कर दो, तो बिल्कुल इसी तरह से थुड़ दिले इंसान की इस आयत में मजम्मत की गई है कि किस जिसका दिल घुटा हुआ है थोड़ी सी तकलीफ़ पे घबरा जाता है, और जब माल मिलता है तो बखील बनता है। कोई भी किसी रूप में भी हम अपने साथ हालों से ये चीज़ पसंद नहीं करेंगे। और इससे ये भी पता चलता है कि बुजदिली इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत से अल्लाह के नबी का ये कौल है कि अल्लाह के रास्ते में उड़ने वाला गुबार और जहन्नम का धुआं किसी एक आदमी के चेहरे में जमा नहीं होंगे, और बुखल और ईमान भी किसी इंसान के दिल में जमा नहीं होते। ये सुनन निसाई की रिवायत है 3113 की। तो क्या पता चला कि बुखल को दिलों से खुरच कर निकालना है। दिल बड़ा रखिए, दिल खुले रखिए, अल्लाह की कायनात में बहुत वसत है। फिर इसी तरह से आयत 38 से 40 में रियाकारी अल्लाह ताला और आखरत पर ईमान की नफ़ी है, यानी अच्छे काम इस नीयत से करने के दूसरे देख लें। आप देखिए कि पहले दौर में इसके मौके कम थे, यानी रियाकारी अल्लाह ताला और आखरत पर ईमान की नफ़ी है। इस मौजू को अगर देखें तो पहले दौर में ये रियाकारी समझ नहीं आती थी ज़्यादा, अब आती है। छोटी छोटी चीज़ को सोशल मीडिया पे डाल देना, किसी को दे रहे हैं, कहीं ले रहे हैं, हद्तक कि इसमें एक बहुत ही बड़ी बात है, हज और उमरे पे जाकर अपनी सेल्फीज लेकर लोगों को शेयर करना, पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो वो भेजना, किसी को कोई मशीन दी, अगर कोई राशन पानी दिया तो उसकी वीडियोस बना बना के वायरल करना। अल्लाह ताला ने इसमें क्या बता दिया कि वल्लज़ीन युनफिकून अमवालहुम रिया नास, जो लोगों को दिखाने के लिए अपने माल खर्च करते हैं और अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, आखरत पर नहीं लाते, तो शैतान उनका दोस्त बनता है। आप इसको एक मिसाल से समझिएगा, आपके घर में कोई मेहमान आते हैं, उनके हाथ में एक बड़ा खूबसूरत सा गिफ्ट बैग है, आप दरवाज़ा खोलते ही उनको देख कर मिलती हैं और साथ ही कहती हैं इस गिफ्ट की क्या ज़रूरत है, फिर साथ आप पकड़ भी लेती हैं, अक्सर ही ऐसा होता है ना। अब क्या हुआ, वो आपने रख लिया, जब वो चले गए तो उनके साथ कोई एक और सिस्टर थी, वो आपको कॉल करती हैं, कहती हैं ये आपने क्या किया भाई, क्या किया, आप कहते वो आपके लिए थोड़ी लाइन थी, वो तो हम आपको ऐसे चलते चलते मिलने आए, हम लोग तो आगे किसी शादी में जा रहे थे, तो ये गिफ्ट तो इन्होंने उधर देना था, चूँकि आपने कह दिया तो वो शर्मा गई। अब मुझे बताइए कि आपको वो गिफ्ट अच्छा लगेगा, जो गिफ्ट किसी और के लिए आया हो वो आपको खुशी ना दे, तो जो अमल दूसरे के लिए किया हो वो अल्लाह को कहाँ अच्छा लगेगा। इसलिए हमेशा आपने आपको नीचे रख कर और इस सोच के साथ कि अल्लाह हमारी नेकियों को दूसरों की हिदायत का ज़रिया तो बना, लेकिन हमारी ज़ात की शोहरत और बड़ाई का ज़रिया ना बना, कि लोग हमें बड़ा और हमें नेक समझते जाएं। फिर इसी तरह से इसमें अल्लाह ताला ने आगे ये भी बता दिया कि छोटी से छोटी नेकी भी कल क़यामत के दिन मैं लोगों को दिखाऊंगा, थोड़ा सा बस इंतज़ार कर लो, सब देख ही लेंगे। फिर उसके बाद आयत 41-42 बड़ी रकीक आयत है, बड़ा सेंटीमेंटल किस्म का, इसके साथ एक वाक्या भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत के ख़िलाफ़ गवाही की बात है। इब्ने मसूद को अल्लाह के नबी ने फरमाइश की कि आप मुझे कुरान सुनाइए, साहब बड़े हैरान होते थे कि अल्लाह के नबी आपके तो दिल पे कुरान नाजिल होता है, तो आप कहते थे मुझे अच्छा लगता है कि मैं दूसरों से सुनूं। आप भी इस पे अमल रखिए, अपने मुख्तलिफ औकात पे मुख्तलिफ आवाज़ों में कुरान पाक सुना करें, हर वक्त इंसान पढ़ नहीं सकता, लेकिन अक्सर हम सुनने की कैफियत में तो होते हैं। तो जब हज़रत इब्ने मसूद ने कुरान पढ़ा तो इस आयत पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोक दिया, और जब उन्होंने देखा तो आपकी आंखों में आंसू थे, क्यों? फ़कैफ़ इज़ा जी न मिन कुल्ली उम्मतिन बि शहीदिन, ज़रा याद तो करो वो वक्त क्या होगा, उस वक्त जब हम हर उम्मत पर एक गवाह को लाएंगे और हम आपको भी इनके ऊपर गवाह बना कर लाएंगे, और उस दिन क्या होगा, चाहेगा वो शख्स जिसने कुफर किया और नाफरमानी की रसूल की, कि लऊ तो सव्वा बिहिम अल-अर्ध, काश ज़मीन फटे और मैं उसमें चला जाऊँ, मेरे साथ ज़मीन को बराबर कर दिया जाए, और वला यक्तुमून अल्लाह हदीसा, और वो अल्लाह ताला से कोई बात छुपा ना सकेंगे। क़यामत के दिन हम सब के सच्चे होने वाला है, हर एक अपने अपने आमाल को जब देख रहा होगा तो कोई उस वक्त खुशी महसूस कर रहा होगा, और किसी की वो कैफियत होगी जो फेल होने वाले बच्चे की हो सकती है, काश ज़मीन फटे और मैं उसमें चला जाऊँ, तो रसूल की नाफरमानी से बचने की बात है। इसीलिए फिर आगे अब अहकामात में एक हुक्म शराब की हुरमत का, और ये इसके सिलसिले का दूसरा हुक्म है।